एसबीएस हिंदी पर हमारे साथ अभी जुड़ी हैं डॉक्टर शैलजा चतुर्वेदी, जिन्हें इस साल का सम्माननीय मेडल ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार मिला है। शैलजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसबीएस हिंदी पर। कैसी हैं आप?
मैं ठीक हूँ प्रिया जी, और आपके श्रोताओं को, आपको भी मेरा बड़ा सुप्रेम भरा नमस्कार और बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कि आपने मुझको एक्नॉलेज किया है।
सबसे पहले तो आपका अभिनंदन, कैसा महसूस कर रही हैं आप?
ऐसा महसूस कर रही हूँ कि अब यह है कि ये तो अच्छा ही लगता है, मैं कैसे कह सकती हूँ कि नहीं अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन जिन कार्यों की वजह से मुझे ये सब सम्मान मिला है, वो कार्य मुझे जीवन भर का सुख देते रहे हैं, तो ये अच्छा लग रहा है कि उन सब चीजों को जिनको कि मैंने बिना किसी पुरस्कार के किया था, बिना किसी पुरस्कार की आशा के किया था, उन चीजों से मुझको कितना संतोष मिल रहा है।
मतलब इतने साल जो आपने कष्ट उठाए, उसका फल आपको आज मिल गया है
जी।
शुरुआत से शुरू करते हैं। जब आप पहली बार ऑस्ट्रेलिया आई थी, तब आपके करियर की शुरुआत यहाँ कैसे रही?
मैं यहाँ पे आई थी करीब, मैं यहाँ आई थी जनवरी 1970 में।
अच्छा।
तो मुझको यहाँ आए हुए 53 साल हो गए। तो जब मैं यहाँ आई थी उस वक्त, तो उसी समय ऑस्ट्रेलियन व्हाइट पॉलिसी रिपील हुई थी। उस समय डॉक्टर्स की यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो ये बड़ा यहाँ पे स्वागत था डॉक्टर्स के आने का। तो उस समय मैं आई थी, तो उस समय हम लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं थी, रजिस्ट्रेशन की भी दिक्कत नहीं थी और भी कोई नहीं थी। तो आते आते मैंने यहाँ पे लगभग 2 साल तक यहाँ के अस्पतालों में काम किया था। तब ये बड़ी बात थी क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस को बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था विश्व के विषय में कि भारत कैसा है। भारत को समझते थे कि ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो इसलिए वो अविकसित देश था। तो उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि भारतीय महिलाएं जो हैं वो पढ़ी लिखी भी होती हैं। तो ये सब देख कर, और फिर वहाँ क्योंकि 1970 में तो बहुत कुछ चेंजेस यहाँ अब से बहुत फर्क था। तो ये सब देख के ऑफकोर्स मैं आई थी बहुत सी ट्रेडिशनल फैमिली से, तो मेरी तो आंखें खुल गई थी। मैंने कभी भी इतने सारे गोरे लोगों को नहीं देखा था, तो डर भी लगता था देख देख के कि हम बिल्कुल जैसे जंगल में, बियाबान जंगल में आ गए हैं। तो बहुत सी खान पान की चीजें, रहन सहन की चीजें, हर चीज में हम बिल्कुल इन लोगों से फर्क थे उस समय।
और आपने कई सारी किताबें अब तक लिखी हैं, उनके बारे में हमें कुछ बताइए, कैसा अनुभव था आपका?
किताबें जो मैंने लिखी थी वो मेरा ये था कि एक मेरी जैसी आयु हो बढ़ती जा रही है, मुझे समापन करना था जो मेरे विशेष जीवन की उपलब्धियां थी। तो सबसे पहले मैंने किताब लिखी थी क्योंकि मुझे एक सम्मान मिला था माँ बनने का, मेरे 2 बच्चे हैं। तो मैंने लिखा था रेजिंग अ चाइल्ड, जिसमें कि हमारी भारत की और हमारे संस्कार, भारत की जिस तरह से हम लोग बच्चों को पालते हैं, और ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों का सम्मिश्रण था। एंड एज ए डॉक्टर ऑल्सो दैट हैड लॉट ऑफ इनपुट इन इट। फिर तो ये तो मेरा माँ बनने का सम्मान था। दूसरा मेरा सम्मान था कि मैंने 50 साल तक एज ए साइकाइट्रिस्ट काम किया है, जिसने मुझको रिकग्निशन दिया था, आइडेंटिटी मेरी फॉर्म की थी कि लोग जानते हैं कि ये साइकाइट्रिस्ट हैं। तो फिर मैंने लिखा था एक रिफ्लेक्शंस ऑफ साइकाइट्रिस्ट, तो ये भी मेरा समापन था कि 50 साल की यात्रा थी। लेकिन सबसे बड़ी जो मेरी आइडेंटिफिकेशन है वो है कि मैं भारतीय हूँ। तो मुझे लगा कि अब जो हमारी अगली जनरेशन आ रही है, उनको पता होना चाहिए कि भारत की कैसा देश है, क्या है। तो फिर मैंने ये सोचा कि पूरी रिसर्च करके कि वैदिक काल से लेकर उसके पहले भी 5000 सालों से लेकर आज तक की भारत की जो प्रगति है, भारत जो भी है, उसके विषय में लिखी। तो फिर मैंने अभी इस पिछले वर्ष की किताब लिखी थी, अ ग्लोबल सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये 3 किताबें लिख के मैंने सोचा कि चलिए अब मैंने सबको अपना धन्यवाद दे दिया है 3 चीजों को।
क्या बात है। इस पर लोगों की आपको प्रतिक्रिया किस तरह से मिली, उसके बारे में कुछ बताइए।
बिल्कुल, क्योंकि मैंने यहाँ साइकाट्री ट्रेनिंग शुरू की थी और उस समय मैं ही सबसे पहली इंडियन फीमेल साइकाट्रिस्ट ट्रेनी पोजीशन में थी। और उसके बाद फिर मैंने कई बहुत सी विधाएं हैं साइकाइट्री में, उन सब में मैंने कार्य किया था। लेकिन इसके अलावा जो और चीजें मैंने की थी वो थी, एक तो उस वक्त हमारा समाज जो था छोटा था, तो हम लोगों को आवश्यकता थी क्योंकि जहां भी भारतीय जाते हैं अपने हिसाब से अपनी एक सोसाइटी बना लेते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि हमारे एक तो भाषा की होनी चाहिए, हिंदी भाषा की, तो मैंने हिंदी समाज का फिर स्थापना की थी। फिर उसके बाद दूसरा था आइडेंटिफिकेशन थी कि डॉक्टर्स, इंडियन डॉक्टर्स, तो हम लोगों ने मिलकर ऑस्ट्रेलियन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो इसी तरह से मंदिर फिर हम लोगों ने बनाया था, इसी तरह से हम लोगों का डेवलपमेंट होता रहा सोशली, सोशल लेवल पर। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि और इसको बढ़ाना है तो, और भारत के लिए भी कुछ काम करना है, तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ में ऋषिकेश में एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, जहाँ पे कि हम लोग करीब 10 साल तक आई कैंप्स लगाते थे ऋषिकेश में जाकर। फिर वहाँ हम लोगों ने और लोगों को भी इन्वॉल्व किया, तो जब वहाँ पे काफी काम बढ़ गया और लोग बहुत से आ गए, फिर हम लोगों ने वहाँ से फिजी शुरू किया था। फिजी में, तो फिजी में मैंने मेंटल हेल्थ सर्विसेज में भी काफी दिनों तक इन्वॉल्व में रही। मैं वहाँ जाके मैंने काम भी किया था, लेकिन मैं वहाँ थोड़े थोड़े दिनों के लिए जाकर वहाँ पे काम करती थी। फिर मैंने वहाँ का एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया था, फिजी का और ऑस्ट्रेलिया का एक्सचेंज प्रोग्राम, कि हम लोग वहाँ जाके, हमारे साइकाइट्रिस्ट वहाँ जाके थोड़े दिन काम करें, हफ्ते दो हफ्ते महीना जैसे जिसको हो। और मैंने फिर एक्सचेंज प्रोग्राम, मैंने ग्रेजुएशन किया था लखनऊ मेडिकल कॉलेज से, तो फिर मैंने सिडनी यूनिवर्सिटी से एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया था स्टूडेंट्स का, कि यहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ जाएं, वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ आए। फिर वहाँ की फिजी की जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज है उसमें भी मैंने बहुत कुछ उनको योगदान दिया था कि उनकी सर्विसेज, लेकिन फिर उसके बाद उनकी गवर्नमेंट बदल गई, तो उससे फिर तब से मेरा काम वहाँ नहीं रहा। उसके बाद मेरे फिर क्योंकि मेरा घर इस समय गोरखपुर वहाँ है, लखनऊ में है, और मेरी बहुत बचपन से मेरे संबंध थे गीता प्रेस, जो कि बहुत ही मशहूर पब्लिकेशन सेंटर है गोरखपुर में, तो वहाँ एक बहुत बड़ा अस्पताल है, कैंसर का हॉस्पिटल है। तो उसमें मैंने सोचा कि क्योंकि पूर्वांचल जो है वो बहुत ही ज्यादा अविकसित क्षेत्र है, वहाँ पर बच्चों के लिए बहुत कम सुविधाएं हैं, और सारे बच्चे पूर्वांचल से लखनऊ जाते थे अपने ट्रीटमेंट के लिए। तो वहाँ मैंने एक फाउंडेशन बनाई जिसका नाम है चाइल्ड कैन केयर फाउंडेशन। तो उस फाउंडेशन के तहत हम लोग अब हम लोग जो बड़ा हॉस्पिटल है हनुमान प्रसाद पोदार हॉस्पिटल, उसमें हमने एक छोटी सी पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी की यूनिट बनाई है। तो उसी से हम चाह रहे हैं कि अगर यूपी गवर्नमेंट का सहयोग होता है तो हम लोग बच्चों के कैंसर की सर्विसेज जो है बड़े पैमाने पर आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो इन्हीं सब चीजों के चलते हुए लगता है कि इन सब का रिकग्निशन हुआ, और इसी इन्हीं के इस सम्मान में मुझको ये सम्मान मिला है।
जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी इस बात से। आपने बहुत बड़ा कार्य समाज के लिए किया है, समुदाय के लिए किया है, और उसका फल आज आपको मिला है, ऐसे हम कह सकते हैं। शैलजा जी, 5 दशक आपने मानसिक चिकित्सा क्षेत्र में काम किया है, इतने सालों में इस क्षेत्र में कौन से बदलाव होते आपने देखे हैं?
बदलाव बहुत ज्यादा आए हैं, क्योंकि जब मैंने साइकाइट्री शुरू की थी तो उस वक्त साइकाइट्री को एक मजाक समझा जाता था, कि आप हर किसी से मजाक कर सकते थे कि पागल हो पागल हो। तो इस तरह से साइकाइट्री का जो रेपुटेशन था बहुत ही ज्यादा वो अलग, जैसे मेडिकल के सब्जेक्ट होते हैं उनसे कहीं अलग था। भारत में भी यही था और यहाँ पर भी यही था, बस एक मजाक का सब्जेक्ट था। लेकिन उस बढ़ते बढ़ते 70s के बाद में बढ़ते बढ़ते ये हुआ कि psychiatry has become a very reputable and a very respected profession. एक तो ये उसकी जो status है psychiatry का, it has been elevated to a big level. दूसरा जो था कि बहुत सारी जो पहले कहा जाता था कि ये psychiatric illness, क्योंकि पहले ये होता था कि अगर कोई भी difficult situation है, कोई भी चीज जो है वो asocial है, antisocial है, वो सब की सब psychiatry में lump कर दी जाती थी। Homosexuality जो थी वो एक disease थी, और भी बहुत सी चीजें ऐसी थी, क्योंकि देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन सैनिटी एंड इनसैनिटी। आप हम सब जो हैं वो इनसैनिटी यानी पागलपन से गुजर चुके हैं, हम सब कुछ साथ ही होता है। हम सब डिप्रेशन डिप्रेस होते हैं, हम सब पैरानॉइड होते हैं, लेकिन मेंटल इलनेसेस तब होती हैं जबकि इट स्टार्ट्स टू इंटरफियर विद योर एवरीडे फंक्शनिंग एंड इट डज नॉट गो अवे। तो साइकाइट्री का बहुत सी जो लिमिटेशंस थे कि आप हर चीज को साइकाइट्री के सेक्शन में डाल दीजिए, वो चीजों के खात्मा हुआ कि अब जो है जैसे होमोसेक्सुअलिटी है या बाइसेक्सुअलिटी है, दीज आर वेज ऑफ लाइफ, दीज आर नॉट इलनेसेस दैट यू ट्रीट. एंड इसी तरह से बहुत सी चीजें हैं जिनमें कि आपको ये सोचना होगा कि हमारी बीमारी, क्योंकि लोग बहुत सी ये करते हैं कि आप बीमारी का सहारा ले लेते हैं, फिर आपकी जो डिसफंक्शनल लाइफ होती है आप कहते हैं अरे मेरा क्या, मैं तो मुझे तो साइकेट्रिक इलनेस है, तो वो चीज जो है बहुत गलत होती है. उससे आपकी रेजिलियंस पावर जो होती है ना खत्म हो जाती है. फिर यह है कि आप फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं. तो ये शिकायत में बहुत अच्छी बात की है कि दे हैव सेपरेटेड कि व्हाट आर द वेज ऑफ नॉर्मल लिविंग, कि यू आर अलाउड टू गेट डिप्रेस, दैट यू आर अलाउड टू बी पैरानॉइड, एंड यू आर अलाउड टू हैव ऑल दोस थिंग्स, बट इट्स नॉट साइकेट्रिक इलनेस. साइकेट्रिक इलनेस इज when these things start to really interfere in a big way with your life. So ye to bahut hi bada hua hai. To ab psychiatry mein itni zyada research ho rahi hai ki biological psychiatry jo hai it is coming. Jab humne shuru kiya tha to Freud ka bahut bada naam tha ki har cheez jo thi Freud pe dependent thi. Freud ki Alfred Freud ki unki theories par, unki philosophy par. Lekin ab jo hai psychiatry it is based on biological facts. क्लिनिकल फैक्ट्स, ब्रेन में आपके क्या चेंजेस होते हैं जिससे कि आपकी थिंकिंग जो है वो गलत हो जाती है. तो ये तो बहुत बड़ा चेंज है. नाउ वी आर कैचिंग अप दैट एवरी लाइक एनी अदर ब्रांच ऑफ मेडिसिन, साइकियाट्री इज अ वेरी रिस्पेक्टेड मेडिसिन बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल कोरिलेट्स एंड बायोलॉजिकल फैक्ट्स.
अंत में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो लोग इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में नए आए हैं भारतीय लोग, उन्हें आप आज क्या संदेश देना चाहेंगी?
हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं तो खुद भारत से आई थी और मुझको नहीं आना चाहिए था, लेकिन इस समय भारत में इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है, इतने सारी रिसर्च फैसिलिटीज हैं, तो और यहाँ पे जो डॉक्टर्स आते हैं, तो ये भी एक मेरा बहुत ही इंटरेस्ट ग्रुप था कि भारत से जब यहाँ डॉक्टर्स आते हैं उनकी यहाँ इतनी ज्यादा डिफिकल्टीज उनको फेस करनी पड़ती हैं कि बहुत से डॉक्टर्स बेचारे जो हैं वो मतलब बजाय डॉक्टरी करने के सिक्योरिटी गार्ड बन जाते हैं, टैक्सी ड्राइवर बन जाते हैं, और चाइल्ड केयर इस तरह की चीजें, फ्रूट पिकर्स बन जाते हैं. इस तरह की चीजें जो हैं वो हमारे डॉक्टर्स की यहाँ पे आके दुर्गत होती है. तो मुझे तो ये लगा कि इंडियन डॉक्टर्स और एनी फॉरेन डॉक्टर्स दे आर नीडेड, दे आर नॉट वांटेड यहाँ पे. तो मैं तो यही करूंगी, एडवाइस करूंगी नए डॉक्टर्स से कि आप इंडिया में रहिए. मैंने अपने कॉलेज से भी गुजारिश की थी, कॉलेज ऑफ साइकियाट्रिस्ट से, कि हम आपकी मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो है वो इंडियन डॉक्टर्स से चलती हैं, तो इसके बदले में आप फेलोशिप दीजिए, 2 साल की फेलोशिप आप बुलाइए इंडियन साइकियाट्रिस्ट को, यहाँ 2 साल की फेलोशिप करके चले जाएं, या एक्सचेंज प्रोग्राम कीजिए. लेकिन आई डोंट कि इंडिया में भी हमने हमारा एक है एसोसिएशन, ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन, एंड आई एम कंटिन्यूअसली asking them कि आप इंडियन गवर्नमेंट से कहिए कि दे शुड मेक इट डिफिकल्ट फॉर इंडियन डॉक्टर्स टू लीव, क्योंकि यहाँ पे आके उनको संघर्ष करना पड़ता है बहुत ज्यादा. फिर कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सर्टनिटी नहीं है कि यहाँ पे वो डॉक्टर ही बन के रहेंगे. तो इसलिए मैं तो डिस्करेज करना चाहूंगी कि भारत में बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, वहां रहिए, यहाँ पे आइए, विदेश जाइए फेलोशिप करने के लिए. लेकिन आने के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप चाहे साइकियाट्रिस्ट बन पाए कि न बन पाए, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है.
मैं आपका फिर से एक बार दिल से अभिनंदन करती हूँ पूरे SBS हिंदी के टीम की ओर से, और बहुत बहुत धन्यवाद आज आपने ये समय हमारे लिए निकाला और हमसे बातचीत की.
बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी, आपने मुझे ऐसा सुअवसर दिया है कि मैं अपनी बात कह सकूं, इसके लिए मैं आपकी रियली आभारी हूं. और आपके और श्रोताओं को नमस्कार.